Melbourne Home Program, 28th of September.
The voice is not so good when it's with me. It's not good at all. It's not very loud.
Okay.
The recording levels are a little low.
Sing loud, all right? And clear. Namaha.
Hare Krishna, Krishna Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari.
His divine grace of love, Chaitanya Arvinda Bhakti Vedanta Swami Jagadguru Sri Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Namacharya Sri Haridas Thakur ki jai, Prems Kaho Se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakti Vrinda ki jai, Sri Sri Radha Krishna Gop Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Brajami Vrindavan Dham ki jai, Adhikmapur Dham ki jai, Jagannath Puri Dham ki jai, Ganga Mai ki jai, Jamuna Mai ki jai, Bhakti Devi ki jai, Tulsi Maharani ki jai, Samavita Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanande, Oh Glorious Sasamul Devanasi, Oh Glorious Sasamul Devanasi, Oh Glorious Sasamul Devanasi, Glorious Sasi Shikura Nityananda.
Hare Krishna. So do we have Bhagavad Gita?
Hare Krishna. Nakyama.
Mandir ma avi jaye.
Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Aaj hum भगवद गीता यथारूप का तेरवा अध्याय और श्लोक संख्याएं 16 और 17 ये प्रकृति पुरुष और चेतना के बारे में सिखा रहे हैं भगवान। प्रकृति क्या है, उसका भोक्ता कौन है और चेतना क्या चीज है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तदक विज्ञेयम् दुरस्थम चांतिके तत्। परमात्मा जो हरेक के हृदय में बस रहे हैं उनका चरित्र बता रहे हैं कि ये परम सत्य के रूप में हरेक जीवात्माओं के अंदर और बाहर उपस्थित है और ये जीवात्मा चाहे चर हो या अचर हो, यानी चर हो यानी मोबाइल घूमते फिरते रहने वाला या अचर एक जगह स्थापित रहने वाला जैसे पेड़ है वृक्ष है, हरेक जीवात्मा के अंदर और बाहर जो सारी उपस्थिति में परम सत्य पड़ा, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है इसीलिए अपनी इंद्रियों से पहचान करने के लिए समर्थ नहीं। यदि ये काफी दूर भी है लेकिन उतने ही नजदीक भी है। दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तु तदज्ञेयम ग्रशिष्णु प्रभविष्णु च। यदि ये परमात्मा हरेक में विभाजित हुए हमें दिखाई देते हैं, यानी कि परमात्मा एक है और सब जगह बटे गए हैं हरेक के हृदय में, तो ऐसा लगता है कि वो विभाजित हो गए हैं यानी कि वो टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखरे गए, लेकिन ये कभी विभाजित नहीं हो सकते, ये कभी विभाजित नहीं हो सकते, और हमेशा वो एक के रूप में ही बने रहते हैं। यद्यपि ये सभी के जीवन का पालन करते हैं, फिर भी हमें ये समझना चाहिए कि ये सबका नाश भी करते हैं और सबको पुनः पैदा भी करते हैं। यानी कि ये परमात्मा तत्व जो परम सत्य का तत्व है, तो वो पैदा करने वाला, टिकाने वाला और नाश करने वाला भी सबके अंदर है, बाहर भी है, कोई ऐसी जगह नहीं। आइए श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझें। वैदिक ग्रंथों में हमें यह समझ में आता है कि नारायण जो परम पुरुष है वो स्वयं हर एक जीव के अंदर और बाहर उपस्थित है। ये आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत में मौजूद है। यद्यपि वो काफी दूर भी है लेकिन इतने ही नजदीक है। वैदिक ग्रंथों में हमें और भी सूचना मिलती है कि आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। ये कठोपनिषद में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय और 21वें श्लोक में बताया गया है। और क्योंकि वो हमेशा अपनी आध्यात्मिक आनंदमय चिन्मय स्थिति में हमेशा रत है, यानी कि उसकी सारी प्रवृत्ति आनंद चिन्मय है। हम ये नहीं समझ पाते कि ये सभी ऐश्वर्यों को कैसे उसकी कैसे मौज उड़ाते हैं। भगवान आनंद चिन्मय और ये आनंद कर रहे हैं, अपनी ही प्रकृति में पैदा किए हैं, टिका रहे हैं, और वो कैसी मौज उड़ाते हैं वो हमें पता नहीं। इसीलिए हम न तो उनको देख पाते हैं न तो समझ पाते हैं, ये अपनी स्थूल इंद्रियों द्वारा, न तो हम उसे देख पाते हैं न समझ पाते हैं। इसीलिए वैदिक भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इनको अपने भौतिक मन तथा इंद्रियों उनको समझने के लिए नाकामयाब होती है। लेकिन यदि जिसने अपनी इंद्रियों और मन को भौतिक मलिनता से, यानी कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से जो शुद्ध हुआ, ये तीनों गुणों से पर हुआ है, यानी कि शुद्ध हुआ है, और कृष्ण भावनामृत भक्ति जो प्रेममयी सेवा कहलाती है, उसके द्वारा वो अपने इंद्रियों मन इत्यादि को पवित्र कर चुका है, वही उनको सदा देखते रहते हैं। भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान को समझना दिखना मुश्किल है। वो इंद्रियां आध्यात्मिक नहीं बनाते तब तक हम उनको न तो समझ पाते न देख पाते। और जिन्होंने ये इंद्रियां पवित्र कर दिए हैं, मन पवित्र कर दिया, तो इनको देखने के लिए हमेशा की बात बन जाती है। ऐसे नहीं कि थोड़ी देर ही देख पाते। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, सदैव हमेशा। ब्रह्म संहिता में यही बता गया है कि जो भक्त ने भगवान के प्रति प्रेम पैदा किया है तो वो हमेशा उसको देखने में समर्थ रहता है। भगवद गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी यही बताया गया है कि भक्त्या तु अनन्या शक्या हम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रविष्टुं च परंतप। केवल भक्ति द्वारा ही और अन्य भक्ति द्वारा ही, दूसरों को नहीं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को एकमात्र इनकी ही भक्ति पैदा करके ही हम भगवान को यथार्थ रूप में हमें समझ सकते हैं, देख सकते हैं और अंतर्गत लीला में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं दूसरे श्लोक के तात्पर्य में कि भगवान हरेक के हृदय में परमात्मा के रूप में बसे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि ये विभाजित हो गए? नहीं, वास्तव में वो हमेशा एक होते हैं। एक उदाहरण दिया जाता है, जो सूर्य है, सूर्य अपनी क्षितिज में एक जगह स्थिर है, लेकिन यदि कोई अपनी स्थिति से जहां से वो क्षितिज में दिख रहा है सूर्य को, वहां से 5000 मील दूर चला जाए, और वहां से पूछे ए सूर्य कहां है, तो हर कोई कहेगा कि वो अपने मत्थे पर क्षितिज ओवरहेड यानी कि मेरिडियन में जब होता है, मेरिडियन यानी कि 12 बजे के जो मध्यान कहलाता है ना, मेरिडियन यानी मध्य, तो मत्थे पर होता है, तो 5000 मील दूर चले जाकर भी बोलेगा कि कहां, तो सब कह दे कि अपने मत्थे पर ही है। वैदिक शास्त्रों में यही उदाहरण ये बताने के लिए दिया जाता है कि परमात्मा कभी विभाजित नहीं होते हैं। इनकी स्थिति ही ऐसी होती है कि जो हम उनसे अलग हुए हैं, हमारी दृष्टि अलग होती है, इसलिए हम उसको विभाजित रूप में देखते हैं, लेकिन वैसे सूर्य कभी विभाजित नहीं होता। वैदिक शास्त्र में यह भी बताया गया है कि एक विष्णु सर्वत्र विराजमान होता है और वही उसकी सर्वशक्तिमत्ता बताता है, सर्वशक्तिमत्ता ओमनीपोटेंस। जैसे एक ही सूर्य बहुत सारी व्यक्तियों को दिखाई देता है। इसलिए यदि परम भगवान श्री कृष्ण यद्यपि सभी के भरता है यानी कि पालन करता है, फिर भी जब विनाश का समय आता है तो सब कुछ अपने अंदर समा लेते हैं यानी कि खुद खा लेते, सबको मार देते हैं। ये 11वें अध्याय में बहुत सुनिश्चित रूप से भगवान ने अपने विराट रूप अर्जुन को बताकर ये बताया था कि ये काल के रूप में आए, सबको हड़प कर रहे हैं, अपने मुख में सबको अंदर डाल रहे हैं यानी कि विनाश कर रहे हैं। सभी को मारने वाले भी वही है। जब सृष्टि पैदा होती है तो सभी को इनका विकास करने वाले भी वही है। और जब विनाश का समय आता है तो उनको खत्म करने वाले भी वही है। ये सब वेद में एक ही प्रकार से निश्चित रूप से कहा गया है कि ये सब के आदि हैं और सबका अंत भी है। सृष्टि पैदा करने के बाद सारी जीव चर अचर स्थावर जंगम सभी उनमें ही स्थित होते हैं। पैदा करने के बाद सब उनमें स्थिति रखते हैं, उनकी बाहर नहीं रखते। और जब विनाश होता है तो अपने अंदर ही समा लेते हैं यानी कि कोई बाहर तो पैदा होता ही नहीं। वैदिक मंत्रों में यह कहा है यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते ये न जायंती जीवंती स पर्यंती अभी संविशंती तद ब्रह्म तद विज्ञानासव। ये तैतरीय उपनिषद में कहा है इनमें से ही सब कुछ पैदा होता है, टिकता है और इनमें ही समाहित होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाका चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणारघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरम् चरमेव च सूक्ष्मत्ववदित्येयम् दूरस्थम् चान्तिके च तत् अविभक्तम् च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम् भूतभर्तुम् च तद्गेयम् ग्रशिष्णु प्रभविष्णु च. फिर से भाषांतर देखो. परम सत्य परमात्मा सभी जीवों की अंदर और बाहर उपस्थित है, चाहे वो चर हो या अचर हो, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होते हैं और अपने इंद्रियों से अत्यंत दुर्गम है, जो हम न तो उसे देख पाते हैं न जान पाते हैं. यदि वो बहुत दूर हैं तो वो बहुत नजदीक भी हैं. यद्यपि ये परम पुरुष परमात्मा हर एक जीवों में विभक्त यानी कि डिवाइडेड फैले हुए विभाजित हुए दिखाई देते हैं, फिर भी वो कभी विभाजित नहीं होते, वो एक ही होते हैं. वो हमेशा एक की ही स्थिति में रहते हैं. यद्यपि ये सभी जीवों के पालन करता है, फिर भी ऐसा समझा जाता है या हमें समझना चाहिए कि ये सभी का नाश करने वाले भी हैं और सभी को पैदा करने वाले भी हैं. तो परमात्मा के बारे में परम सत्य जो है वो जानने के लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाने को कह रहे हैं कि इनको कैसे समझा जाए. ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, कंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. एक एक कण कण में भी तो है, दो कण के बीच में भी है. यही 13वें अध्याय में भगवान की उपमा जो अपने विस्तारों करके करके सबसे बड़े होते हुए सबसे छोटे भी बन सकते हैं, कहते हैं कि हर एक आत्माओं के हृदय में भी वह अति सूक्ष्म कण परमात्मा के रूप में भी रह सकते हैं. अणोरणियां महतो महियान, अणु से भी छोटा अणु और महतो से भी सबसे बड़ा. ये दोनों विरोधाभास कभी हम भौतिक दुनिया में एक साथ में नहीं देख सकते. पैराडॉक्स कहते हैं उसे, विरोधाभास. अपनी इंद्रियां ऐसी चीज देखने के लिए कभी ट्रेंड हुई नहीं, वो ट्रेनिंग करनी है. भक्ति में ये ट्रेनिंग मिलती है कि हम कैसे समझें, हम कैसे समझें. हम अपनी इंद्रियों पर इतने मुस्ताक रहते हैं, सब कुछ हम अपनी इंद्रियों पर ही डिपेंडेंट रखते हैं, लेकिन आप ताज्जुब करोगे तो अपनी इंद्रियां कितनी कमजोर है. अपनी इंद्रियों से तो दूसरों की, दूसरे जीवों की इंद्रिय बहुत ताकतमंद है. एक कुत्ता हमसे अच्छा सुन सकता है, कभी देखा है कुत्ते को? कुत्ता यदि 50 फुट दूर हो तो हमारे हृदय की धड़कन कितनी चल रही है, तेज से या हल्की आराम से चल रही है, ये कुत्ता जानता है. जो डॉग ट्रेनर होते हैं ना, वो लोग उसके बारे में सिखाते हैं कि जो गार्ड डॉग होते हैं, अटैक डॉग होते हैं, बी अवेयर ऑफ डॉग, यूं जब कहते हैं ना तो देखना कि ये कुत्ता शायद ट्रेन हुआ होगा। अपने देश में जो बाहर रास्ते में घूमते फिरते कुत्ते ट्रेन नहीं होते उनको पता नहीं, लेकिन परदेश में तो खास ख्याल रखना, कभी भी कुत्ते की बीच में से नहीं जाना। तो कहते हैं कि ही है सच बिग यू नो बिल्ट इन सिस्टम लाइक रडार यू नो। तो ये हिरण इत्यादि अपना स्वाभाविक रूप से प्रतिकार की यानी कि डिफेंस करने की शक्ति तराते हैं। ये थोड़ी सी आवाज में जग जाते हैं। गुड़ाक यानी निंद्रा, जिसने निंद्रा को जीती है वो गुड़ाकेश कहलाता है। अर्जुन का नाम गुड़ाकेश बताया है। तो अपने वेस्ट वर्जीनिया में कीर्तनंद ने कुत्ता रखा था, उनका नाम गुड़ाकेश रखा था। ही नेवर स्लीप्स। कुत्ता कभी सोता है? आंख नीचे भी सोता नहीं, उसके कान हमेशा सजाग रहते हैं, इतना पावरफुल कान होता है कुत्ते का। तो यदि कोई एक्साइटेड आदमी हो, उत्तेजित बन गया हो, वो उसकी धड़कन ज्यादा चलती है तो वो कुत्ता नजर रखता है कि ये कोई गलत काम कर नहीं रहा है, उसे पहले ही उस पर शराब मार उसको पकड़ के भगाएगा। एक गिद्दर दो मील ऊंचे उड़ रहा है लेकिन चूहा कहाँ है वो देखेगा। हमारी आंख कितनी कमजोर है, अपनी इंद्रिय पर हम मुस्ताक नहीं हो सकते। हम इतना भरोसा नहीं रख सकते। यह अकलमंदी है, ये अपूर्ण इंद्रियां हैं। अपूर्ण इंद्रियों से हम कुछ भी पूर्णता नहीं पा सकते। पूर्णता यानी परफेक्शन। यदि ये टीवी कौन सा मॉडल है भाई? फ्लैट स्क्रीन प्लाज्मा टीवी है क्या? तो देखो दो साल में बदल दोगे, क्योंकि सम डिफेक्ट इज देयर। अपूर्ण इंद्रियों से जो कुछ बनाते हैं वो भी अपूर्ण होता है, सही ना? गाड़ी के मॉडल बदलते रहते हैं, रिकॉल करते हैं, क्यों रिकॉल करते हैं? ये खराबी आ गई है भाई, सब लाओ वापस, यहां जाओ फैक्ट्री में और वर्कशॉप में चले जाओ, हमारे खर्चे पर काम। तो अपूर्ण इंद्रियों से जो कुछ पैदा करते हैं वो सब अपूर्ण होता है। ये क्षति, क्षति मीन्स डिफेक्ट। दूसरी क्षति क्या है? अपूर्ण इंद्रिय होने के कारण हम सच को झूठ मानते हैं और झूठ को सच भी मान सकते हैं। कभी सांप देखा है? रात को जाओगे तो रस्सी पड़ी होगी, फिर भी उसे सांप मान लोगे, उसे इल्यूजन कहते हैं, माया। जो नहीं है उसे स्वीकारना और जो है उसे नकारना। भगवान है तो पहले नकारते हैं, हमें पता नहीं। कभी कभी नकारात्मक स्वभाव कहां तक पहुंचता है, ईर्ष्या के कारण। अरे भगवान हो तो बता दो, तो भाई देखने की बात है तो देखने के लिए आंख तो चाहिए, भगवान जैसे हैं वैसे ये आंखों से थोड़े दिखाए जाएंगे, इंद्रिय ही अपूर्ण है, अपनी इंद्रिय कितनी कमजोर है कि 50 फीट से आगे हम सही ढंग से नहीं देख पाते, सारी इमेज दृष्टि धुंधली बनती है। तो अपूर्ण इंद्रियों से जो पैदा होता है वो अपूर्ण डिफेक्टिव होता है, और वो झूठ को सच मान लेता है, सही। और तीसरा है, मनुष्य मात्र गलती को पात्र होता है, कमिट मिस्टेक्स टू एयर इज ह्यूमन, कहते हैं ना, कभी किसी ने गलती की है, तूने की है कभी? Have you done any mistake in your life?
Yes.
कोई exception है? कोई भी नहीं। और देखो अपूर्ण इंद्रिया माया से आवृत होना, तीसरी क्षति है गलती करना, फिर भी हम सत्य के अंश होते हैं, इन चीजों से घेरे होकर हम अहंकारी बन जाते हैं अज्ञानता में, क्या हम समझ रहे हैं कि हम कर्ता हैं, अहम कर्तृत्व की भावना अहंकार कहलाता है। तो अहंकारी होने के कारण हम दूसरे जीव के साथ हमेशा थोड़ा छल कपट का व्यवहार करते हैं, हम चाहे एक दूसरे से कितना प्रेम करते होंगे लेकिन 100% कभी कुछ नहीं बताते, थोड़ा चीट करते हैं, मोर और लेस चीटिंग। तो चार क्षतियों होने के कारण हमारा सारा जो नापतोल का जो प्रयोजन होता है वो हमेशा निष्फल रहता है, सिद्धि नहीं कर सकता। तो जब भौतिक चीज को भी संपूर्ण रूप से हम अपनाने के लिए हम फेल होते हैं, तो आध्यात्मिक जो अति सूक्ष्म होती है वो कैसे समझ पाए, उसको समझना देखना उसको पाना सब मुश्किल हो जाता है। भगवान या परमात्मा कोई भौतिक चीज थोड़ी, आत्मा से जो परम होता है वो परमात्मा कहलाता है, हर एक जीव आत्मा होती है, और जीव का स्वभाव, जीव मीन्स लिविंग एंटिटी, जीवन की एक इकाई जिसे कहते हैं हम लोग, इकाई है, इकाई मीन्स यूनिट, इंडिविजुअलिटी। तो हमें जीव के बारे में या आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, तो सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि क्या हम यदि ये शरीर नहीं है आत्मा, ऐसा अनुभव होता है कभी? कभी किसी ने अनुभव किया है हम ये शरीर नहीं है आत्मा है, ऐसे निर्णय पर हम आए हैं कभी? मुश्किल ही लगती है, है? लेकिन आप देखोगे तो आप आत्मा होते ऐसा व्यवहार करते हैं फिर भी क्यों भूल जाते हैं कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर है, मेरा होना मेरी संपत्ति बताता है, फिर भी हम ये मानते कि मैं ये शरीर हूं। दोनों विरोधाभास है, कौन हा? ये मेरा शरीर है फिर भी हम जानते हुए भी मैं ही शरीर हूं कि समता बना देते हैं। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा, शरीर मिलकत कहलाती है, मैं मालिक कहलाता हूं। कभी ऐसा होता है क्या मालिक मिलकत बन जाती है? होता है कभी? आप मिलकत बन गई, आप मालिक नहीं रहे। ये शरीर मेरा है, यानी कि मेरा होना मैं से अलग होता है। हम कहते हैं ये मेरा नाक है, मैं नाक हूं या ये तो नाक शरीर का अंग है, तो शरीर भी मेरा है, फिर भी हम ये मान लेते हैं कि मैं शरीर हूं। ये गलत धारणा, दोनों में से निश्चयात्मक भाव लाना चाहिए और वो बुद्धि का काम, विवेक का काम। विवेक बुद्धि, तो जब हम अज्ञानता से मैं अपने शरीर को ही मेरा स्वरूप मान लेता हूं, लेकिन मन बुद्धि और अहंकार, आपका मन है, है? क्योंकि मन में बहुत विचार होते हैं, बहुत इच्छाएं होती है। देखा है कभी मन ने? बुद्धि को देखिए, अहंकार को भी देखा है, है? ये सब सूक्ष्म होते हैं, तो फिर आत्मा को देखने की बात कहां? तो परमात्मा देखने के लिए क्यों दादागिरी करते हो? भगवान दिख गए, भगवान हो तो बता दो, देखने की आंख है, खुद का देखने का ठिकाना नहीं। वो अपना विस्तार कैसे करता है वो जानने की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें उनकी राय लेकर अपनी स्थिति समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ये भ्रमणा, माया, अहंकार, ये सब हटाने की आवश्यकता होती है, जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से अलग करती है। तब भगवान ये समझाते हैं कि परमात्मा तत्व मेरा तत्व है, मेरा विस्तार है, मैं अपने निजी धाम में, अपने मूल स्वरूप में रहता हूं, लेकिन भौतिक प्रकृति पैदा करने के लिए मैं अपना विस्तार करता हूं, मेरी इन्फ्लुएंस छोड़ देता हूं। ऑस्ट्रेलिया में कोई प्राइम मिनिस्टर है? है ना? कभी देखा है उसको? लेकिन सुना होगा, अखबार में पढ़ा है, तो यानी कि अखबार में पढ़ते हुए हमें यदि मालूम होता है कि कोई है, सही ना, तो उसकी इन्फ्लुएंस है, तभी तो उसका नाम बारंबार आता है। तो ये तो अप्रकट प्रभाव है, अनमैनिफेस्टेड, इम्पर्सनल कहते हैं, उसका प्रभाव है, लेकिन प्रभाव से भी थोड़ा परिचय होता है। वो कहां रहता है? वहां तो बहुत चौकीदारी होगी, ये तो घुसने नहीं देंगे, सही ना? लेकिन कोई जानता है कि ये लोकेशन, इसका एड्रेस है, यहां रहता है, सही? तो वो थोड़ी अधिक जानकारी है। किसी का प्रभाव जानकर हम उसे जरा जाने की मिलने की चेष्टा करते हैं, कम से कम एड्रेस तक पहुंचते हैं, लेकिन जाने नहीं देंगे क्यों भाई, क्या संबंध है, क्या संबंध है, व्हाट बिजनेस यू हैव हियर, जाने ही नहीं देंगे। तो संबंध होना यानी कि भगवान के व्यक्तित्व को पहचानने के लिए संबंध की आवश्यकता होती है, भगवान के विस्तार में संबंध की आवश्यकता नहीं होती, उनका प्रभाव जानने के लिए आवश्यकता नहीं। इसका मतलब यह है कि परमात्मा अपने विस्तार द्वारा हर एक कण कण में समाये हैं, कण के अंदर हैं, कण के बाहर भी हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां भगवान का ये परमात्मा रूप मौजूद नहीं है। जो सब स्थिति पैदा कर रहे हैं वो टिका भी रहे हैं और खत्म भी कर रहे हैं, लेकिन ये पैदा करना, उसको टिकाना और खत्म करना ये भौतिक सृष्टि में ही होता है। आध्यात्मिक सृष्टि तो हमेशा की होती है, वहां न तो कुछ पैदा होता है, न कुछ टिकाने का सवाल भी होता है, न कुछ खत्म करने का सवाल है। तो एक भौतिक सृष्टि में हम लोग थोड़े चक्कर में घूमते रहते हैं, और एक दिमागी चक्कर होता है और एक शारीरिक चक्कर होता है, ये दोनों चक्कर हमें यहीं रखने वाले हैं, बेहतर है कि ये चक्कर में से छूटना। तो भगवान जैसे समझाते हैं वैसे समझने की कोशिश करना चाहिए कि इस घर में चलो आप ताला लगा के चले जाओ, लेकिन एक व्यक्ति है घर में अपने कमरे में सोया है, जाओ आपको निश्चिंता होगी ना घर में कोई है, अरे बाकी के कमरे तो खाली हैं, उसका क्या, ना कोई है, कम से कम एक अपने कमरे में होता है तो उसको थोड़ा अपना अपनी इन्फ्लुएंस होती है, कोई आया जगेगा, सही ना, दूसरे कमरे तो खाली है उसमें नहीं है, इसका मतलब है कि उसको क्या हर एक कमरे में रहने की आवश्यकता है, उसकी इन्फ्लुएंस होती है काफी है। तो उसी तरह भगवान जब पैदा करते हैं तो उसको वहां से अपना कमरा छोड़ने की आवश्यकता क्या है, यहां उसकी इन्फ्लुएंस काफी है। तो उसी तरह वो हर एक कंकण में समाते हैं और टिकाने वाले भी हैं, और उनका व्यक्तित्व ऐसा है, उसको समझने के लिए ये भौतिक दुनिया में इन इन इनकी जो परमात्मा की स्थिति है अभी अभी स्थिति का, तो उसको तो एकत्रित करनी पड़ती है, कॉन्सेंट्रेट करनी पड़ती है और ध्यान द्वारा समझ, एक प्रभाव है दूसरा स्थिति बताता है, परमात्मा शब्द भगवान की स्थिति बताता है। जब ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति भगवान का प्रभाव बताती है, भगवान शब्द भगवान का व्यक्तित्व, जो छह ऐश्वर्यों से संपूर्ण व्यक्तित्व जो होता है वो उस पर निर्देश करता है। तो यदि प्राइम मिनिस्टर के साथ किसी का संबंध है, उसके साथ उसका व्यवहार होता है, और व्यवहार के अंतर वो जो प्रेम की अपेक्षा है जिसके साथ लिए, तो वो संबंध टिका है, अपने फायदे के लिए इनके साथ संबंध है, तो क्या जो ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो संबंध रखता है तो उसका प्रभाव भी ऑटोमेटिक जान लेता है, उसका एड्रेस भी उसको पता होता है। जबकि प्रभाव जानने वाले को न तो एड्रेस का पता है न तो व्यक्तित्व का पता है, सही ना? उसी तरह भगवान, परमात्मा और ब्रह्म, परम सत्य के तीन अवस्था की पहचान है, परम सत्य की पहचान तीन अवस्था में होती है, उसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के। वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व यानी सत्य। भगवान यहां सत्य पैदा करते हैं कि परमात्मा हर जगह है, कण कण में भी है, वस्तु को पैदा करने वाले हैं, टिकाने वाले हैं और उसको नाश भी करने वाले हैं। सही। तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, दूर भी है और नजदीक भी है। दूर कैसे है? कृष्ण भगवान बहुत दूर है लेकिन परमात्मा तो अपने हृदय में ही बैठे, नजदीक है। कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा, कठोपनिषद में कहा कि एक पेड़ की एक ही डांग पर दो पंछी बैठे हैं, रूप रंग में समान है, फर्क इतना है कि एक पंछी के मुख में फल है और विह्वल है, विह्वल में एंग्जाइटी में, दूसरा शांत चित्त से उसे देख रहा है। यही अध्याय में उसको उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में बताते हैं। 13वें अध्याय में परमात्मा को उपद्रष्टा और अनुमंता, उपद्रष्टा यानी साक्षी, उसको देख रहा है, और अनुमंता यानी उसको रजा देता है, यानी कि परवानगी देता है कि जा तेरी इच्छा में आया कर, वो कभी जबरदस्ती नहीं करते, समझा से कर, सही, लेकिन उसकी इच्छा पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो व्यक्ति इंडिविजुअल। तो टिकाने वाले वो है और नाश करने वाले भी है। नाश कैसे करेंगे कि काल के रूप में आकर सारी चीज खत्म कर लेंगे। ये सब भगवान का प्रभाव के अनुसार काम होता रहता है भौतिक दुनिया, लेकिन भगवान तो बहुत दूर है, वो अपने कमरे में बैठे हैं, इनको कौन देखने को जाएगा। लेकिन समझ में आएगा कि भगवान है। एकोप्यसौ रचयितुं जगदंड कोटि कोटीश्व शेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद् ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तम। ये एक में से अनेक हुए, एको बहुश्याम, एक में से अनेक हुए, हम उनमें से नहीं है, क्योंकि जैसे आग होती है और चिंगारी भी निकलती है, दोनों की उपस्थिति साथ साथ में, कौन पहले पैदा हुआ, अंडा हुआ या मुर्गी, बोलो कौन पैदा हुआ पहले? पेड़ पैदा हुआ या उसका बीज? क्या पैदा हुआ? मुर्गी। हाथ ऊंचा करो, कौन बिलीव करता है पहले मुर्गी पैदा हुई? 3, 4, 5, 6 और अंडा, पहले अंडा पैदा हुआ? कोई कहेगा? कोई तीसरा विकल्प है क्या? अरे दोनों साथ साथ में पैदा हुए हैं, पर दैट्स अ फैक्ट, अंडा और मुर्गी दोनों दोनों साथ साथ में पैदा हुए हैं, क्यों नहीं? भगवान कमजोर है लेकिन समझने की आवश्यकता है। यदि बीज है तो क्या बीज में वृक्ष नहीं है? बीज में वृक्ष नहीं है, उसकी पोटेंसी है। एक सारे बड़े वृक्ष की पोटेंसी एक बीज में है, तो बीज और वृक्ष को अलग कैसे कर सकते हैं? पोटेंशियल को देखना चाहिए, बीज और वृक्ष को हम अलग नहीं कर सकते। एक छोटे से बीज में बड़ा वृक्ष समाया है, सिर्फ अंतर है समय का, अंतर है समय का, लेकिन बीज में वृक्ष है और वृक्ष में ही बीज है। सही ना? क्या गुजराती माँ कविता भूली गया? हाँ, तेरे पछे खबर तो छे पर बोलया नहीं तेनु। तो दोनों साथ साथ में क्यों नहीं? भगवान कमजोर है? भगवान कमजोर नहीं है। तो भगवान छोटे से भी छोटे बन सकते हैं, बड़े से भी बड़े बन सकते हैं। वो अपनी इंद्रियों जो कमजोर है उसकी मर्यादा की बाहर की बात है। तो यहां भगवान ये सूचना देते हैं कि ये जो अपनी इंद्रियां त्रिगुणातीत करने के लिए आवश्यकता है, ये इंद्रियों बनी कैसे? शरीर बना है, शरीर त्रिगुणात्मक कहलाता है। भौतिक चीजें तीन गुणों द्वारा संचालित होती हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। हर एक चीज के गुण होते हैं, हर एक चीज के। ऑरेंज जूस पिया है कभी? सुबह उठते ही यानी कि ब्रश करके या ना दो के तुरंत ऑरेंज जूस पीना सुबह, एक असर करता है। दोपहर में पियो और रात को पियो, क्या क्या असर होती है पता? सुबह में जो ऑरेंज जूस पीता है तो कहते कि सोने जैसी उसकी असर होती है, दोपहर में पीता है तो सिल्वर जैसी यानी कि चांदी जैसी असर होती है, रात को पीता है लेड जैसी शीशे जैसी होती है, पॉइजनस। ये गुणों का प्रभाव है। सत्वगुण सोना जैसा है, रजोगुण चांदी जैसा है, तमोगुण लेड जैसा। सूर्योदय से पहले उठोगे तो सत्वगुण जागृत होता है, सूर्योदय के बाद उठोगे तो रजोगुण, सूर्य अस्त होता है बाद में तमोगुण प्रवृत्त रहता। जब जब शरीर पैदा होता है हम कुंडली दिखाते हैं, ग्रहों की क्या स्थिति है, है ना? ये सात्विक प्रधान है, राजसिक प्रधान है या तामसिक है, ये असुर योनि वाला है या सूर्य योनि वाला है, देवताओं की योनि वाला है, टेवा मिलाते कॉम्पेटिबिलिटी में ये सब देखते हैं। नहीं तो पहले से ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। सही, क्योंकि हर एक ग्रह की असर होती है। किसी का यदि गुरु बलवान है तो प्रेडोमिनेंसी वो रखेगा, किसी को शनि की पनौती है, किसी को मंगल है, कोई किसी को ये ग्रहों की असर शरीर पर होती, लेकिन आत्मा को क्या लेना देना? कुछ नहीं, आत्मा को कुछ नहीं लेना। शरीर पर असर होती है और शरीर पर जो असर होती है उस उसके परिबल को तो हमें सहनशीलता तितिक्षा द्वारा बनाए रखना होता है, क्योंकि किसी का शरीर परफेक्ट नहीं है। जब इंद्रियां परफेक्ट नहीं है तो कौन अपना शरीर परफेक्ट लेकर आया है? परफेक्शन के लिए तो मेरिटोरियस एक्टिविटी यानी बहुत उत्तम कर्म जो सुकृति कहलाती है उस पर आधार बना है। सुकृति करने वाले सत्वगुण में स्थिर रहते हैं। जब सत्वगुण प्रधान होता है तब उसके जो परिणाम आते हैं सुख की भावना लंबी आयुष्य की भावना इत्यादि। तो सत्ययुग में सत्वगुण प्रधान था, त्रेता युग में रजोगुण प्रधान था, द्वापर में तमोगुण की वृद्धि और कलयुग में सिर्फ सत्यानाश तमोगुण। कोई ये भी बताता है कि सत्ययुग में सत्वगुण प्रधान था लेकिन द्वापर में सत्व थोड़ा कम हुआ ने रजोगुण यानी 50-50 हुआ, त्रेता में रजोगुण और तमोगुण 50-50 हो गए लेकिन कलयुग में 100% तमोगुण। तो ये सारी भौतिक सृष्टि ये तीन गुणों द्वारा सब जो पैदा हुआ है उसका संचालन करती है, लेकिन आत्मा कभी पैदा होता नहीं, कभी मरता भी नहीं, शरीर मरता है आत्मा तो उस पर असर करेगी। हमारी जानकारी जो है समझने की आवश्यकता या जानकारी जिसे कहते हैं वो तो इंद्रियों से, तो जब शरीर इन गुणों के प्रभाव से सिर्फ भौतिक जीवन जीने का आदती बन जाता है तो क्या अपनी इंद्रियां भी वो आदत में नहीं घुसी होगी, इसीलिए इम्परफेक्ट रहती है। फिर भी मनुष्य हजारों मनुष्य में से कोई एक ही मनुष्य कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है और हजारों सिद्ध हुए में भगवान को जानने वाला कोई एक ही होता है, और जो भगवान को जानता है वो अनेक 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 मनुष्य जन्म बार जब ये निश्चय पर आता है कि वासुदेवम सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र वही सब कुछ है, तो स महात्मा सुदुर्लभ वो बहुत सुदुर्लभ है, न तो किसी देवता को जानने के लिए यहां कहा है भगवद गीता में और स्वयं भगवान कृष्ण अपने आप को कहते हैं। ऐसा कभी नहीं आया है कि हजारों मनुष्य में कोई जो यत्न करता है और जो सिद्ध हुआ है वो शिवजी ही सर्वमिति या गणेश ही सर्वमिति, ऐसा कभी नहीं कहा। सर्वमिति कभी नहीं कहा, कहा नहीं कहा, किसी भी कोई देवताओं को बीच में नहीं लाया। वासुदेवम सर्वमिति समाह, एक ही व्यक्तित्व पर हमें नजर करनी चाहिए, क्या वो परम सत्य को पूर्णतया रजु करता है कि नहीं। तो ये भगवान को समझने की जो रीति बताई है कि हमें हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो शरीर के जो परिबल जो होते हैं जो सत्व रज तमोगुण द्वारा वो हमेशा बदलता रहता है अपना स्वभाव। ये बच्चा 12 साल का हो जाएगा उसका स्वभाव बदलेगा, देखो क्या माँ बाप को परेशान करता है देखना, क्योंकि इनकी इच्छा वृत्ति जागृत होती है, रजोगुण प्रबल होता है, क्या क्या नहीं करता। ये तो आध्यात्मिक चेतना यदि जागृत होती है तो दूसरे गुण सब्यू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यहां ये दो श्लोक में परमात्मा के लिए जो कहा गया है वो वास्तविक है। आत्मा तो इनका अंश है, लेकिन परमात्मा परम सत्य की स्थिति बताता है। हम सामान्य शब्दों में कहते हैं परमात्मा तो सब जगह बसे हैं, लेकिन कौन परमात्मा? परमात्मा का चेहरा देखा है कभी? भागवत में बताया है, वो चतुर्भुज विष्णु के रूप में खड़े हुए बताया, वो क्षीरोदकशायी रूप कहलाता है। दूसरे विष्णु जो क्षीरोदकशायी विष्णु से ऊपर का बताया है, जो एक ब्रह्मांड का नायक है, ये तो हर एक जीव के अंश में आया ना, लेकिन एक ब्रह्मांड में उनके जो वो गर्भदक्षाय विष्णु है जो ब्रह्मा जी को भी पैदा करता है, तो उसकी नाभि से कमल निकलता है, कमल में ब्रह्मा जी, तो वो गर्भदक्षाय विष्णु कहलाता है। और उसे भी ऊपर सारे ब्रह्मांडों के जो नायक के रूप में भगवान का रूप बताया है वो कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये तो विष्णु रूप, और ये भौतिक जगत की सृष्टि में इनका रूप है, वैकुंठ में कौन? वहां नारायण शब्द आ रहा है, नारायण, नारायण परा सर्वे कुतश्चन भगवान, वो वैकुंठ यानी कि अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए हम यदि भगवान को भजते हैं, भगवान के ये विष्णु स्वरूप को भजते हैं, तो चार प्रकार की मुक्ति मिलती है। लेकिन विशुद्ध भक्ति में तो अपनी इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा स्वरूप परी करके भगवत गीता में बताए हुए कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद दामम मम परमम, वहां से एक बार जाकर वापस आने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। वो भगवान श्री कृष्ण का परम धाम जो कहते हैं, वो गोलोक वृंदावन, वो वैकुंठ से भी ऊपर बताया है, केंद्र में। तो हम लोग ये भौतिक सृष्टि में भगवान द्वारा हम यहां आए, हमारी इच्छा है, इसलिए भगवान ने ये सृष्टि पैदा की है, और हम अपने को ये सृष्टि का अंग मान लेते हैं। गलत धारणा है कि नहीं? हम सृष्टि के अंग हैं क्या? आप पैदा हुए हैं कभी? पैदा हुई है तो? नहीं, कभी पैदा नहीं हुई है, शरीर पैदा हुआ है। अभी कितने हमने ये आत्मा अपनी अज्ञानता में, भौतिकता में जब आया ना, तो वो माया में फंस गया, कह रहे हैं। तो हमने कितने माँ बाप बदले हैं, कितने पढ़े, पिताजी हैं, पिताजी आप कितने नंबर के हो, उनके डैडी हैं, कितने नंबर के पिताजी बने, हमें आत्मा के स्तर पर विचार करने के लिए आत्मा के स्वभाव को जानकर, आत्मा परमात्मा का अंश है तो परमात्मा की क्वालिटी वाला होना चाहिए ना, उसे सच्चिदानंद कहते हैं। तो आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप ढक जाता है, और अहंकार से हम कहते हैं कि बताओ भगवान कहाँ, ये तो बड़े बड़े पंडित भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो परमात्मा को देखना, इनकी जानकारी प्राप्त करनी बड़ा विषय बन जाता है, लेकिन हमें ये प्रायोगिक रूप से बताते हैं कि आसान है। यदि हम शरीर नहीं है तो कौन है? शरीर तो मिलकत है, और हम अपनी समझते हैं, ये शरीर मिलकत है, ये दी गया है, हमें दी जाती है मिलकत, हमने तो पैदा नहीं किए शरीर, इच्छा की है इसलिए पैदा हुई है, वो तो भगवान की कृपा से पैदा हुई है, अपने माँ बाप तो निमित्त बने हैं, उन्होंने कही है। माँ कहीं फैक्ट्री है शरीर पैदा करने की? नहीं। जीव पहले भगवान से आता है, लेकिन उसकी इच्छा अलग साम्राज्य भोगने की है, तो इसीलिए भौतिक सृष्टि बनानी पड़ी। अब वो अहंकार से ये शरीर में रहकर अपूर्ण इंद्रिय द्वारा वो अपनी अहंकार को प्रकट करता है कि भगवान बताओ, तब भगवान कहते हैं देख मैं ऐसे हूं, ऐसे कैसे समझिएगा, कैसे समझेंगे? इसीलिए ये उसकी समझदारी जो त्रिगुणात्मक है उसे साफ करने की आवश्यकता है। कैसे सफाई करोगे बोलो? सफाई का उपाय क्या है? ये भौतिक त्रण तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, साफ करने के लिए कितनी माला करते हो है? हरे नाम हरिन्नाम एव केवलम कलौ नस्त्येव 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 गतिरन्यथा। एक कलयुग में सफाई का कोई दूसरा मार्ग नहीं बताया, सिर्फ हरिनाम, और उसमें भी सुचित महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 इति षोडशकम् नाम नाम कलिकल्मषनाशनम् परतर उपाय सर्व वेदेशु न दृश्यते। सारे वेदों में से बरोबरी करने वाला या ऊपर सुपीरियर कोई उपाय है ही नहीं, ऐसा ब्रह्मा जी कह देते हैं तो फिर हमें क्या स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती? तो हमें यदि भगवान की जानकारी की आवश्यकता है तो अवश्य ये उपाय सीरियस रूप से कर लेना चाहिए, उसमें राह नहीं देखनी। जो नहीं माला करते हैं तो माला हाथ में उठा लो, इसमें कोई शर्म नहीं, जब से जगह है तब से सुबह समझनी चाहिए। ये जागृति की आवश्यकता है, ऐसे नहीं मेरे तो बहुत हो गया, आप तो कहो कि मैं रिटायर हो गया, मेरे बच्चे करे बहुत हो गए, नहीं 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 नहीं, हर एक व्यक्ति भगवान का अंश है, भगवान ये नहीं देखेंगे कि आपके बच्चे वो है इसलिए चलो ना, वो ग्रांट कर देते हैं, नहीं तो पितरों को तारण कैसे भी हो सकता है, पर फिर भी बच्चे पर इतनी भारी जिम्मेदारी छोड़ना क्या पिता की फर्ज नहीं थी? एक दूसरे के पूरक हैं, या है पिता बनना, यानी कि मृत्यु के मुख में अपने बच्चों को उभारना भी पिता की जिम्मेदारी होती है। यदि जितनी हो सके वो जिम्मेदारी अदा करके यदि उबार न पाए तो क्या पिता पुत्र पर या पुत्री पर अपेक्षा रखेगा कि मेरा तारण कर? पितृ तारते इति पुत्र, सही ना? तो ये परस्पर की जिम्मेदारी है, हम अकेले अकेले जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, हमें साथ साथ में जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसलिए पिता की इच्छा पुत्र की इच्छा दोनों भगवान के प्रति है। भगवान का नाम गुण इत्यादि गाकर जो भक्ति में बनी रहे, ऐसा उपाय करने की आवश्यकता है कि ये जिम्मेदारी आसानी से हम कर सके। ज्यादातर पिता घर में ऊंचे पद पर होते हैं क्योंकि ये जिम्मेदारी है, और उनकी जिम्मेदारी द्वारा सारा घर कृष्ण भावना पर बन सकता है। लेकिन कलयुग है, करे क्या, ना समझ तो हम भी थे पहले, सही ना? लेकिन जब समझ रहे हैं तो हमें ये उपाय करना। कभी कभी बच्चे माँ बाप को सिखाते हैं कि चलो हरे कृष्ण करो, कलयुग में उल्टी गंगा बहती है, कलयुग में उल्टी गंगा बहती है। बच्चे कहते हैं कि पिताजी बहुत हो गया, चलो थोड़ी माला तो करो, सही ना? So, भगवान नजदीक भी है कैसे और दूर भी कैसे है। अपने निजी स्वरूप में हमेशा दूर रहते हैं। यही कृष्ण भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। मैं हरेक को अपना रूप नहीं बताता, मैं अपनी योग माया से ढका रहता हूं उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग जानने के लिए अधिकारी ही नहीं है, तो बताऊं क्यों? जो व्यापारी होते हैं, सच्चा असली हीरा जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है वो पहले बताएंगे ही नहीं, पहले देखेंगे ये इसके खिसे में कितना दम है, उसके अनुसार निकालते हैं माल, सही ना? उसके खिसे में कितना दम है उसे पहले ही कहने के व्हाट्स योर लिमिट, देन आई विल टॉक विथ यू। है ना? कोई दुकानदार है क्या? ऐसे बहुत सारी क्वालिटी के सामान होते हैं अपने पास, पर असली हीरा जिसको चाहिए तो पहले तो ये भी जानना चाहिए कि असली हीरा क्या होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, और उसका दाम क्या होता है, देखना पड़ेगा। अनजाने में नहीं तो कोई भी नकली हीरा पकड़ा देता है, उसे पता ही नहीं। तो उसी तरह हमें भगवान ये परम व्यक्तित्व है, ओपन अप। भगवान परम व्यक्तित्व है, उनका प्रभाव ब्रह्म कहता है, और उसकी स्थिति जो हर जगह अपना विस्तार करके बैठे हैं, वो परमात्मा के रूप में जो क्षीरुदक्षय रूप विष्णु का रूप बताया गया है, तो वो उसकी स्थिति है जो हृदय में ही बैठते हैं, कहीं और नहीं बैठते। हम हर बार मेरे हृदय की भावना नहीं समझते हो आप, अरे हृदय क्या चीज है बताओ तो सही, ये तबकता हुआ है वही हृदय कहलाता है। दैट मीन्स वो अपने अंदर में अपना अंत मर्मस्थल जिसे कहते हैं। मेरे कहने का मतलब तो समझो, मेरा मैं कौन हूं वो बोलता है। कभी कभी कह देते कोई ना समझ गैर समझ हो जाती है किसी की, ओ मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे अंतरात्मा से मैं पूछता हूं मैं वो नहीं था, आई मीन इट वॉज सम डिफरेंट, यू मिसअंडरस्टूड मी, आई एम सॉरी। सो वो कौन बोल रहा है, कितने अंदर जाओगे आप? तो कहने का मतलब है कि ये भगवान का विस्तार या भगवान का परम सत्य तीन ढंग से समझा जाता है, एक ढंग से नहीं। ज्यादातर हम लोग भक्ति करते हैं तो भगवान के व्यक्तित्व में मानते हैं। कृष्ण भगवान को तो सब कोई जानता है, सही ना? लेकिन इनका विस्तार, इनका प्रभाव इत्यादि क्या है वो कुछ नहीं समझ पाते। इसीलिए हम सिर्फ मान्यता के आधार पर भगवान के व्यक्तित्व अपना जैसा मान लेते हैं। लेकिन हम तो मूर्ख। भगवान कहते हैं कि दिव्यता समझनी है तो दिव्यता की पहचान ये भौतिक गुणों से परे होकर ही हो सकती है, क्योंकि आत्मा दिव्य होती है। आत्मा का मूल स्वभाव जो सच्चिदानंद है वो दिव्य है, तो दिव्यता की आंखें बनानी पड़ती है, दिव्यता के चक्षु समझने लेने पड़ते हैं, वो पहनने पड़ते हैं। प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अपने हृदय की आंखों में जो हृदय यानी जहां आत्मा बैठा है, आत्मा दिव्य है, तो ये दिव्यता की आंखों में प्रेम का अंजन डालकर हमें भगवान को नित्य देख सकते हैं। जो भगवान को अपने जैसा मानता है वो मूर्ख है। इसीलिए मूर्खता में हम कहते हैं कि भगवान बता दे, वो तो बता दे। वो अपने आप को शरीर मानता है। ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी हो गए जो भगवान के प्रति, इनके व्यक्तित्व के प्रति ना समझ रहे हैं, उनको पता ही नहीं, क्योंकि भक्त नहीं। भक्त होता है तो उनको तीन अवस्था पूरे पूरी पता चल जाता है। लेकिन भक्ति की ट्रेनिंग होती है, उसकी परंपरा में आना पड़ता है। ये यूनिवर्सिटी में जैसी उसकी प्रेस्टीज होती है ना पढ़ने की, उसी तरह ये परंपरा की प्रेस्टीज होती है। तो ये अध्यात्म का ज्ञान है, आत्मा के स्वभाव के अनुसार काम करना, देखना, समझना आत्मा का स्वभाव के अनुसार। हम जो जैसे व्यवहार करें ये तो शरीर के व्यवहार है, शरीर का स्वभाव है, और सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से पूरे पूरा। इसको शुद्ध करने के लिए भगवान की सेवा, नाम की सेवा, सब भगवान के साथ जुड़, क्योंकि ये भी शक्ति भगवान की दी गई है। हमने कहां पैदा किए हैं? तो भगवान अपने आप को जैसे समझाते हैं वैसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्त मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति यानी ठीक से नहीं जानता हूं, मूर्ख है, मूढ़। मूर्ख लोग मुझे जब मैं मनुष्य के जैसे रूप में आता हूं ना तो अपने आप में एक मान लेता, परम भाव यानी दिव्य भाव नहीं जानता। जो मम भूत महेश्वरम, मैं इन लोगों का नियामक हूं, तो वो समझ रहा है कि मैं भी इन लोगों में से एक हूं। क्या भगवान हमें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? इनकी भौतिक शक्ति के द्वारा हमें कंट्रोल कर रहे हैं। किसी भी अवस्था में वही हमारा कंट्रोलर होता है, इसलिए परमेश्वर कहलाता है। ईश्वर यानी कंट्रोलर, परमेश्वर यानी कंट्रोलर ऑफ द कंट्रोलर्स। आप कितने ईश्वर हो बताओ? हाउ मच कैन यू कंट्रोल योर सेल्फ? कितना कंट्रोल कर सकते हो? मैं तो इंद्रिय कंट्रोल करने की बात ही नहीं करता। ये शरीर में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों मसल्स हैं। एक वॉलंटरी मसल्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, इनवॉलंटरी को नहीं। तो हाउ मच कंट्रोल आर यू? एंड यू थिंक यू आर द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ व्हाट यू सर्वे? अपना एम्पायर बनाने आए हैं? हमसे ज्यादा बड़े बड़े भी कंट्रोलर है, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। माया कंट्रोल्स एवरीवन, पर माया कंट्रोल्स अस ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, शी इज नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। प्रकृति किसकी है? भगवान की। माया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत भी परिवर्तते। भगवान कहते हैं कि ये माया मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है, मेरी है ये माया, दैवी है, मामूली नहीं है। दैवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये माया तरना बहुत दुष्कर है, क्योंकि दैवी है और मेरी है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति ते, सीधी मेरी शरण में जो आता है, देवताओं की नहीं, मेरी शरण में जो सीधा आता है, तो वही मेरी माया को तर सकता है। यानी कि भगवान की शरणागति कितनी आवश्यक है। जब शरणागत होते हैं तो सेवा द्वारा शरणागति टिकानी होती, तब हमें ये सारा मामला पता चलता है, नहीं तो ये सब उलझा उलझा लगता है। जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेते, माला नहीं करते, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। चाहे कितने भी धार्मिक हो, लेकिन भगवान के नाम के जप नहीं करते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा मनुष्य जीवन शुरू ही नहीं होता, हम पशुता में ही रहते हैं। चाहे धार्मिक पशु हो, पशु धार्मिक पशु, हम तो अध्यात्म की बात कर रहे हैं, धार्मिक पशु हो सकते हैं, रिलीजियस एनिमल्स। केतली माला करशो बोलो? अरे दम मारो, होतू हसे चार ज रोटली खावानी। जुठू ना, हम तमने उत्तेजन आपू छू, बार नहीं 16 रोटली खावानी कही छे। आत्मा नो खोराक छे ए भूखो ना रहेवो जोईए। पिंजड़ा ने तो बहु साफ कर्या कर, एने खवड़ावानू। सो हम तो आए हैं, जो माला करते हैं इनको कमिटमेंट आगे बढ़ाने को, जो नहीं करते हैं उनको शुरू करवाने की बात है।
बताना पूछो,
आप कितने करते हैं? वाओ, ओनली 3 मोर टू गो, पुश। आप कितने करते हैं? 1। अरे माता जी, रेगुलर खाना तो होता ही है, नहीं तो तंदुरुस्ती चली जाएगी। आत्मा को तंदुरुस्त रखो, सारी तंदुरुस्ती आ जाएगी, सही ना? बोलो कितने करो? 4। बुद्धि से संकल्प करो। बुद्धि का विषय है, बुद्धि तो दी है ना भगवान ने, मन से मत करना, मन तो ठगावा है। मन पर बिल्कुल भरोसा मत करना, जो मन से करता है तो समझो काम से गया। क्योंकि मन चंचल है तो इनकी माला भी चंचल। आप अब तक आपने निश्चित रूप से बोला नहीं कि मैं 4 करूंगी, ये तो बुद्धि का विषय है। संकल्प करना बुद्धि का विषय है, मन का नहीं है। आप मन से नहीं करती है ना, कि करती है, इसीलिए एक ही हो पाती है और कभी कभी नहीं हो पाती, क्योंकि मन आपको नहीं करने देता। यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, डू इट, अदरवाइज you won't be even happy with yourself. Buddhi purvak jiva, to you will be more in control of yourself. आप कितने कर दें? एक वो भी ऐसी हालत है. आप एक ही रोटी खाते हैं कितनी? तो तुम आत्मा को भी खिलाओ है ना, तो फिर चार करोगी? बुद्धि से कोशिश करोगी या मन से? बुद्धि से. और आप चार करोगे? ओके. बुद्धि को आगे रखना, मन को आगे मत रखना.
नहीं,
बुद्धि बन बुद्धि बन ऐसे नहीं, बुद्धि को ही आगे. केतली थाय तुम्हारे? चाले एक्सेप्शन दौड़ू हो तो पी जिंदगी तो बहु मामूली कहवा वारंवार मनुष्य अवतार नहीं मरतो. તમે એમ વિચાર કરો કે 84 લાખ યોનિમાં આપણે આપણી જ ઈચ્છા માટે આવતા હોઈએ. સો આજ એક આપણે મનુષ્ય યોનિમાં એવો મોકો મળે કે ભગવાનની ઈચ્છા મુજબ આપણે જીવી જઈએ. સો તમે જુઓ તો ખરા કેટલો એને સાથ આપેલો છે ને, બરાબર. હવે હવે આટલું બધું કરજો, શું કામ રાખો એનો? થોડો ચુકવતા તો જાઓ. વ્યાજ પણ માફ કરે છે, એ વ્યાજ સાથે એ વાણીઓ નથી. નહી તો બધો નીચો બી ઘરે એવો જે જાણી જોઈને નહીં આપવા માંગતા ને, તેમ કે મૃત્યુ હરસ સર્વ હરસ ચાહમ, બધું સામટું લઈ લો. તમે ધર્માદા કરો, 2-4 રૂપિયા મૂકીને એને પટાવવા માંગો તો એ ના જોઈએ, એમ કે તું નથી આપતો તેટલું જ જોઉં છું. દેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. સો યુ કાન્ટ ચીટ હિમ, હી ચીટ્સ અસ, બટ હિઝ ચીટિંગ ઇઝ વર્શિપેબલ. We should allow him to cheat us. That is devotional service. Gopi kyun bhagwan ko apne ghar makhan churane aaye aisi sari vyavastha karti thi. અપને ઘર લાલા માખન ચોરાને આવે, એસે નહી કે વો આકર દે જાયગી, નહીં. હી રિજેક્ટ્સ, હી સેઝ નો, આઈ લવ ટુ સ્ટીલ બીકોઝ એવરીથિંગ બિલોંગ્સ ટુ મી. સો હમે સામને સે એસા કરના પડતા હૈ, ગીવ હિમ. ચેરિટી began like that. It's an effort to give him. Jab usko nahi pahunchti hai to dusron ko dene ki kya avashyakta hai? Ishavashyam idam sarvam yat kinchat jagatyam jagat. Jo diya gaya hai sab kuch bhagwan ka, uski shakti ke dwara paida hua. Sahi na? So give him. If you can't give your life, એ શ્રીમદ ભાગવત મેં 10મે સ્કંધ મેં આવતા એતાનવાન જન્મ સાફલ્યમ નૃણામ ઇહ દેહેશુ દેહીનામ ઇહ દેહેશુ. हम लोग देही हैं, देह नहीं है, देह में बसने वाले देही कहलाते हैं। देही नो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा
तथा मुह्यते।
अब इंग्लिश में बोल जा ओके। एज द एम्बॉडीड सोल पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द बॉडी, जस्ट लाइक फ्रॉम द चाइल्डहुड टू बॉयहुड टू यूथ एंड टू ओल्ड एज, सिमिलरली एट द टाइम ऑफ डेथ ही एक्सेप्ट्स अ न्यू बॉडी। सो दोज हू आर वाइज दे डू नॉट गेट बिवल्डर्ड लाइक दैट। तो हम लोग देही तो एतानवान जन्म साफल्यम, अपने जन्म की सफलता इसी देह में भगवान को प्राण देकर, अर्थ देकर, बुद्धि देकर, नहीं तो वाचा देकर करनी चाहिए अपने जीवन की सफलता। चलो भाई प्राण नहीं दे सकते हैं, कंजूस हैं, अब मैं अपने लिए जी रहा हूं, ये भगवान क्यों मेरा प्राण लेने नहीं चाहते, तो कहके चलो मेरे लिए काम कर, मैं तुम्हारे लिए क्यों काम करूं, मेरे अपने लिए नहीं करूं, तो कि चलो अर्थ दे दे थोड़ा, वो भी नहीं देना है तो बुद्धि दे, बुद्धि भी नहीं है तो हरि बोल करा दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, ये मांग रहे हैं तो कब दोगे भगवान का नाम, दोनों हाउ मेनी राउंड्स बोलो। सहधर्मचरिणी है, चार ले करवानी है, सह है
तो कैसे करे
तारे करू, नाम सहधर्म चरणी, यू गॉट इट, चार माला। हे योगेश भाई हरे कृष्णा,
योगेश भाई आओ,
तमा कसीन ने अपना हस्बैंड चार माला करवानू केच जय कहाँ से माला हस्तो वाली धर्म काम ढील हो आप कितनी कर वन
एक
करवानी
करू
तो चार कर रखो ना रात के बीच में बस गुड यस हरे कृष्णा जय most of the discussions you missed आप regularly यहाँ हफ्ते में कितनी बार, एक बार हफ्ते में, अरे 15 दिन हफ्ते में कोई regular नहीं है क्या, क्यों too busy I am trying to encourage that our human form of life begins when we start chanting Hare Krishna Mahamantra. That's the thing. Otherwise not, we are human even. We may be social animal, rational animal, but animal. Our humanity begins by becoming Krishna conscious. That's the start. You know, the humanity, real humanity begins by becoming Krishna conscious. Bhagwan ke sandarbh mein hamara jeevan jab shuru hota hai, tab manavta aati hai. मानवता मनु भगवान के नियमों का पालन करने से मिलती है, because he is the originator of mankind. मनु जस्ट लाइक द सन सस्टेन्स द अर्थ, नरिशेस द अर्थ. And life is possible by the sun, right? तो भगवान की शक्ति है ना, सूर्य में जो शक्ति है, यदि शक्ति मौजूद है तो शक्तिमान मौजूद नहीं होना चाहिए. वेद में सूर्यदेव जो अग्निदेव जो है, ये सूर्यदेव का नाम है विवस्वान, और उनका शरीर अग्नि का बना है. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? बन सकता है कभी? सूर्य देव का शरीर स्वरूप अग्नि का बना है. हाउ वुड यू एक्सप्लेन? अपने एक्सपीरियंस में है किसी का शरीर बना है कोई जीव अग्नि में? पर हाउ वुड यू अंडरस्टैंड? यदि हम ये पंच महाभूत शरीर, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का बना है, पांच तत्वों का बना है, तो क्या एक तत्व का भी बन सकता है कि नहीं? एक तत्व का भी बन सकता है कि नहीं? इसका मतलब है जीवात्मा जो सर्वज्ञ है, जीवात्मा का कभी नाश होता नहीं क्योंकि पैदा भी नहीं हुआ है, पर है मौजूद और उसे कोई भी स्थिति इसका नाश करने के लिए समर्थ नहीं है. ये आत्मा पानी से गीली भी नहीं हो सकती, अग्नि से जल भी नहीं सकती. न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायां भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर. ये आत्मा शरीर मरते हुए भी मरती नहीं, एकदम पुरानी है. मीन्स उसका कभी जन्म हुआ ही नहीं. अज कहते नित्य यानी कि हमेशा. तो सनातन धर्म में ये आत्मा की व्याख्या पर अपना धर्म बना है, शरीर की व्याख्या पर अपना धर्म नहीं. हम हिंदू हैं, ये शरीर को लगता है. आत्मा न तो हिंदू होती है न मुसलमान होती है. और मुसलमान लोग जब भारत पर चढ़ाई करने आए तब सिंधु नदी क्रॉस करनी पड़ती थी, तो वो लोग समझते कि सिंधु नदी के दूसरी पार जो रहने वाली प्रजा है उसे उन लोगों की टर्म्स में हिंदू कहलाते हैं, इसीलिए हम लोग हिंदू. तो क्या हम हिंदू हैं क्या? अपने शास्त्र में भगवद गीता में हिंदू शब्द का नाम नहीं, कोई वेद में हिंदू शब्द नहीं. हम आत्मा होती है। वैदिक धर्म सनातन धर्म वही नाम से हम जाने जाते थे। लेकिन ये आत्मा के क्वालिटी पर है। तो आत्मा अच्छेद्योयम अक्लेद्योयम अशोष्य अच्छेद्य जो आत्मा को हम छेदना यानी कि टुकड़े नहीं कर सकते, क्लेद्य यानी कि उसको पानी नहीं भेज सकते, अशोष्य उसको सुखा नहीं सकता पवन, अग्नि जला नहीं सकती, अदाह्योयम। तो जीव या आत्मा अग्नि में भी हो सकती है कि नहीं? तो क्या उसका शरीर अग्नि का बना हो सकता है कि नहीं? अपने शरीर में भी तो अग्नि है, गर्मी है कि नहीं? अग्नि है ना। तो यदि हम ये पंच महाभूत में पांच एलिमेंट में रह सकते हैं, फिर भी ज्यादातर इसमें तो पानी ही पानी है, 80% इज वाटर। कंपोजिशन देखने जाए तो 80% वाटर, शायद हार्डली 0.5% अग्नि होगी जो इतना टेम्परेचर देती है। बाकी पृथ्वी तत्व कितना है, आकाश तत्व कितना है, एम्प्टी स्पेस है अंदर। If I can stay within the five elements, you know, यदि मेरी इच्छा हो और मेरे ऐसे उपाय हो, मेरी ऐसा कॉन्सेंट्रेशन हो, मेरी ऐसी भावना हो अंत समय, तो वही स्थिति में प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन मेरा कर्म कैसा है सारी जिंदगी का, कि उसके लायक, वो इच्छा के लायक है कि नहीं? कर्म के आधार पर ही तो इच्छा और इच्छा के आधार पर कर्म होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आत्मा सर्वत्र ग कहा गया, सब जगह जा सकता है, तो अग्नि में क्यों नहीं? देयरफॉर अग्निदेव हैज अ फायरी बॉडी। तो जब ये सूर्य देव जिसका नाम है विवस्वान, हाँ, और उनके बेटे वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु, मनु महाराज, मनु और शत्रुपा, हाँ, दोनों ब्रह्मा जी ने पैदा किए, और उनकी संतान मानव कहलाती है। तो मानवीयता भगवान के संबंध में जागृत होनी चाहिए, अन्यथा कोई मानवीयता होती ही नहीं, पशुता होती। मानवीयता यानी कि ह्यूमैनिटी के बहाने हम कितने प्रकार के इनह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, हा? So our proposal is that the humanity begins when we start chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो आप लोगों की जो प्रगति है उस पे आधार है। So we request how many rounds you are going to chant or how many you are chanting.
Decreased.
Good. So now determine something. And this determination requests you for a specific number, sankalpa shakti. Taat pe aa jana. Try. वैसे तो बहुत सारी ट्राई होती ही रहती है. इफ यू डिटरमिन देन यू विल ट्राई. मन से ट्राई नहीं करनी, बुद्धि से करना, वो हमारी प्रपोजल है. इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन माइंड बिकॉज इंटेलिजेंस इज वेरी नियर टू द सोल बट माइंड इज नॉट. माइंड इज क्लोजर टू अवर सेंसेस एंड सेंस परसेप्शन. And because we are our senses are uncontrolled, mind is uncontrolled. Therefore, intelligence should have to become prominent over the mind. Therefore, and the senses will be controlled automatically. So, sankalpa buddhi se lena hai, aur uske mutabik yadi kaam karo ki mere aath mara karni hi hai aaj. चाहे कुछ भी क्यों ना हो, देन यू आर इन कंट्रोल. यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ. कम टू दैट स्टैंडर्ड ग्रेजुअली टू 16 एंड यू विल बी विक्टोरियस. हारने के लिए थोड़े यहां आए हैं भाई. तो फिर दैट इज डिटर्मिनेशन. उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात असंग त्यागो सतो वृत्ति षड्भिर् भक्ति प्रसिद्धि. भक्ति की प्रसिद्धि उत्साह रखो, निश्चय पूर्वक काम करो, सहनशीलता बनाओ और इन तीनों को मिलाकर ही सारे काम करो. चार हो गया, पांचवा असंग त्याग. एसोसिएशन की बात की, इट्स द परफेक्ट एसोसिएशन. और सतोवृत्ति, जस्ट कल्टिवेट मोड ऑफ गुडनेस सो यू कैन फंक्शन बेटर इन अ प्लेजेंट वे रादर देन इन एंग्जाइटी. कल्टिवेट मोड ऑफ गुडनेस यानी कि गुडनेस का आहार होना चाहिए, सात्विक आहार. तो सात्विक विचार आएंगे और सात्विक व्यवहार हो पाएगा. तामसिक और राजसिक खाने से हमारी मन की चंचलता बढ़ती है. काम विकार, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा नित्य वैरिणम. ये काम और क्रोध दोनों हमारे नित्य शत्रु बने बैठे हैं जो रजोगुण से पैदा हुए हैं. इट इज नॉट हेल्पिंग अस, रादर इट इज पुटिंग अन इन बिविल्डरिंग स्टेट. तमोगुण तो हमें एकदम नीचे डाल देता है अज्ञानता में, यू नो, एंड वी बिकम लिथार्जिक, लेजी, इंडोलेंस. और अपना हित नहीं समझते हैं तमोगुण में तो दूसरों का भी कैसे कर पाएंगे. हमें अपनी वृत्ति सुधारनी पड़ेगी. सो दैट इज कॉल्ड यू नो कमिंग इन द मोड ऑफ गुडनेस. दैट इज इम्पोर्टेंट. इन दिस वे यू डिसिप्लिन योरसेल्फ. Keep yourself clean. Sattvic. Think clean. Communication is another kind of association. You know? कोई भी प्रश्न यदि है इमीडिएटली रिजोल्व, अदरवाइज ए टाइट नॉट ऑफ डाउट्स विल एक्यूमुलेट. बेहतर है निकाल कर दो उसको, समाधान कर. पूछना, एवरीथिंग इज अवेलेबल. हम लोग तो ई कम्युनिकेशन करके कंसल्ट कर लेते हैं. immediately, rapid. Good. Come back to 8. 8 to karte the na? So. अरे भाई नाक क्यों कटवा रहे हैं? चलो क्या किया बेजना? खाओ बेसी की?
नहीं नहीं खाओ नहीं बेसी।
तो चलो।
लिया भी मारे?
अरे नहीं ये बेजना न पूछवा न बाकी चाहे जो।
ओ बेजना। ओ अरे वो मारा बुला रहे हैं आपको।
मैंने सोचा कहाँ चले गए मैं कमिट करवा रहा हूँ इसलिए भागे क्या? द्रौपदी मैं बोलू क्या? सह भगवान नाम जप महिमा आटलो बधो छे केटली करशो
रोज जे करिए छे
केटली संकल्प थी बोलो खाली लटकेलू बोलवानू नहीं A bird in the hand is better than two in the bush. એટલે આંકડો આપો
ભગવાન લાઈક કોડ આપી લઈએ ભગવાન નું નામ લેવા માટે હું આંકડા નથી માનતો વોટ એવર લાઈક
વોટ એવર મીન્સ વોટ પછી ભગવાન પણ ભગવાન પણ ભગવાન એટલો સ્પેસિફિક છે વોટ એવર નથી એ બહુ રોકડો છે રોકડા ને તમે એમ લટકાવો ઉધાર ને અથવા ઉધડ્યું કર્યા કરી ને કામ તે નહીં ચાલે આઈ વોન્ટ યુ ટુ બી એ વેરી ડિસિપ્લિન્ડ પર્સન Don't do anything undisciplined. Therefore, I want number. It's a discipline. Your mind will be disciplined. And mind can be only disciplined by intelligence. You think you are intelligent? Then do it.
What I want to do?
You have to put up a specific number. Tama ketlo samay jaye chhe mala karta. કેટલો જમા કેટલો ગાળી શકો છો બોલો અડધો કલાક મૂકશો અરે 24 કલાક માં કંજુસ આટલી બધી કંજુસ 24 કલાક માંથી ભગવાન ને માટે માળા ને માટે કેટલો સમય આપવાનો બીજું તો કશું છોડાવવાના નથી માળા માટે તો તમારે થોડું ફાળવવું પડશે ભાઈ કેમ કન્ફ્યુઝન સામે વળે જો તમને કહું જો હું તમને કહું આપણે 100 વર્ષ જીવીએ ને તેમાં 50% તો ઊંઘમાં જાય એટલે 50 વર્ષ રહે ઓલરાઈટ 50 વર્ષમાં પણ આપણે જે બાળપણ ને એમાં રમતમાં કેટલો સમય જતો રહે અને તેમાં ભણવા જઈએ તો કેટલો સમય જતો રહે પછી અર્થ ને કામ માટે કેટલો સમય જઈએ હા આપણી પાસે ખરેખર જીવવાનું જે હોય ને માન લગભગ 7-8% જેટલું જીવન મળતું હોય છે બાકી બધું વેડફાઈ જાય છે હવે એ પણ એને માટે પણ બચાવવા નહીં માંગતા હોય તેટલો તો સમય કાઢો યસ આઈલ ગીવ યુ 24 hours ટુ ફિનિશ રાઉન્ડ ઓકે બોલો કેટલા 15 મિનિટ જ અરે 24 કલાકમાં 15 મિનિટ માળા કરવાની એટલે 15 મિનિટ સવારના 15 મિનિટ સાંજના એવું ઘુસપુસ નહી ચાલે. ત્યાંથી શું થઈ ગયું? અરે કૃષ્ણ થી નવા નથી તો પછી. અને ભગવાન ના માળા, ઘરમાં માળા બહુ લટકેલી છે, ખીટી પર બહુ ટીંગાયેલી હોય છે, ખબર છે? રાખી મૂકે ને, એક એક ઘરમાં માળા હશે. એમ કરજો, અડધો કલાક આખા દિવસમાં, અડધો કલાક એટલે દસ મિનિટ દસ મિનિટ દસ મિનિટ કરીને છ વખત કરજો. ઓકે, તો 60 મિનિટ, આમ સોરી 30 મિનિટ કરજો. તો તમને, તમારથી ચાર માળા તો સારી રીતે થઈ જશે. હા, ઓકે, પ્લીઝ ડુ ઇટ. તમે પણ ઓકે રોકડું. યોગેશભાઈ, અલોક પાસે માળા છે કે?
અલોક પાસે માળા તો નથી.
આપી દો ને.
મારી પાસે એક જ સ્પેર છે આજે, પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ ડેફિનેટલી
મંદિર માંથી લઈ આવો ને.
હા, ડેફિનેટલી નેક્સ્ટ ટાઈમ લાવો તો જરૂર. હવે માળા રાખા જ હાથમાં વધારે.
ઓકે, ચાર ચાર એમ કરજો. અહીંથી ગણવાનું શું કરું? એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ. હા, એવી રીતે તમારે ગણવાના. ઓરાઈટ, અને 108 ગુણ્યા ચાર કેટલા થાય? 8 × 32 ને 432. બરાબર ને? તો 432 વાળા માળા કરજો, અને ધીરે ધીરે વધારવાની. પછી એ હું તમને પછી રાતમાં યોગેશભાઈ કહેશે, પણ એ વધારે 1728 ઉપર આવવાનું. અહીંયા તો પેલું કાઉન્ટર પણ મળે, પટ 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 સર. માળા સારી, માળા બહુ સાયન્ટિફિક છે. તમારી પાંચે પાંચ ઇન્દ્રિય માળા જપતા વપરાશે તો તમારું કોન્સન્ટ્રેશન બહુ વધશે. અને એક એક ઇન્દ્રિય જો ભગવાનના નામની સેવામાં ઉપરાઈ જાય તો યુ આર વિક્ટોરિયસ. એ કઈ જૂનવાણી વિચાર નથી, પણ ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી યુ નો વેરી પ્રુવન ફેક્ટ બાય સાયન્ટિફિક રીઝન્સ. આફ્ટર ઓલ, આપણે ડિસિપ્લિન નથી બીકોઝ વી આર નોટ ઇન કંટ્રોલ. એટલે આપણા બધા પ્રોબ્લેમ ભૌતિક માન્યતા નથી, ગમે તે હોય ને, એ બધા સમજાય. પણ ભગવાનનું નામ અને માળા આપણને સીધા કંટ્રોલમાં મૂકી દે છે. યજ્ઞાનામ જપયજ્ઞોસ્મી, બધા યજ્ઞોમાં સેક્રિફાઈસમાં આઈ એમ ધ જપયજ્ઞ. ભગવાન કે મારું સ્વરૂપ છે, બોલો. અને આપણે તો માળા લેતા પણ અચકાઈએ. બધું શું શું છે? ચાલો પ્રાર્થના બોલો તો તમે પ્રશ્ન. મહાપ્રસાદે ગોવિંદે, નમો બ્રહ્મણે વૈષ્ણવે, સ્વલ્પ પુણ્યવતામ રાજન વિશ્વાસૌ નો જા